नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 20,000 करोड़ का करीब 3,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, उसे लेकर कितना कम कवरेज हुआ। 6 ग्राम चरस पकड़ा गया, उसे लेकर जो कवरेज हो रहा है, पता चलता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा शाहरुख खान की कितनी वैल्यू है और उस जनता की कितनी कम वैल्यू हो गई है जो आराम से 117 रुपए पेट्रोल भरा रही है लीटर, जो कभी 65 रुपया लीटर होने पर आंदोलन किया करती थी। ऐसी जनता को यह कैसे पता चलेगा कि 2-3 हफ्ते से शाहरुख खान के बेटे को लेकर मीडिया इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जनता तो यह भी नहीं समझ पाएगी कि एक अंग्रेजी अखबार के संपादकीय पन्ने पर एक ही थीम को लेकर 3-3 लेख लिखे जा रहे हैं, जिसमें सरकार की केवल तारीफ ही तारीफ है। लिखने वाले सरकार के, सरकार की पार्टी के और समर्थक। जब जनता का विवेक नष्ट हो जाता है और वो जनता नहीं रह जाती, तभी एक मसीहा निकलता है जिनका नाम उपेंद्र तिवारी होता है, जो यूपी सरकार में राज्य मंत्री होते हैं, जिन्होंने पूरे रिसर्च से जनता को समझा दिया कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हैं।
2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4-व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है।
तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम
कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है।
मंत्री जी अब कुछ भी बोल सकते, क्योंकि जनता ने कुछ भी समझना छोड़ दिया है। यह कामयाबी जनता की है, जिस पर झूमने के लिए उसे ही जनोत्सव मनाना चाहिए ताकि सरकार खुश हो सके। जनोत्सव में आने वाली जनता कहे कि हमने अब जानना और समझना दोनों छोड़ दिया है, पेट्रोल वाकई सस्ता हो गया है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर बात पर शर्म ही की जाए, कभी कभी शर्म वाली बात पर गर्व किया जाना चाहिए। जन के खत्म हो जाने का उत्सव जनोत्सव मनाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सही था कि 3 महीने तक फर्जी आधार पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हुए कवरेज से टीवी और दर्शकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्शक इसके बाद किसी और फर्जी मुद्दे पर हफ्तों की बहस और कवरेज देखना चाहेंगे। जो रिया के साथ हुआ वो आर्यन के साथ होना ही है और वो किसी और के साथ भी होगा। इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है ताकि आप जब 117 रुपया लीटर पेट्रोल भराकर घर आएं, न्यूज चैनल देखें तो तकलीफ ना हो कि कई महीनों से अब तक पेट्रोल और डीजल के नाम पर आपकी जेब से 30-40 हजार रुपए तो निकल ही गए हूं। जब जनता ही नहीं बची तो जनता की बचत की क्या चिंता। इसलिए इसे लेकर धीरज खोने की कोई जरूरत नहीं कि आर्यन खान का कवरेज इतना क्यों हो रहा है। एक फिल्म स्टार के न झुकने या एक अच्छी भली इंडस्ट्री को कबाड़ में बदलने की कोशिशों के सवालों से हम दूर ही रहना चाहते हैं। इस सवाल से भी दूर रहने जा रहे हैं कि 19 सितंबर को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जब 3,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया तो उसमें क्या हुआ। 22 सितंबर को 8 लोग अरेस्ट हुए। कुछ दिन बाद इस केस को एनआईए के हवाले किया गया। गुजरात के भुज स्थित नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएसटी विशेष अदालत की एक टिप्पणी 1 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा कि मुंद्रा पोर्ट से आपको किस तरह के डिटेल मिले हैं। डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कहा कि बयान रिकॉर्ड हुए हैं, अदाणी ग्रुप इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि किस तरह की कानूनी सलाह, क्या वे कानून से ऊपर हैं? कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मसला है। 1 अक्टूबर के एक्सप्रेस में खबर छपी है कि इसी कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीआरआई जांच करे कि पोर्ट अथॉरिटी को किसी तरह का लाभ तो नहीं हुआ। इस केस के कवरेज से संबंधित सभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सवाल दूसरा है। इसका जिक्र इतना बताने भर के लिए था कि 3,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर चुप्पी है, और 6 ग्राम चरस पर हंगामा। हम इस बात को समझना चाहते हैं कि कॉन्शियस पोजीशन क्या है। जिसके आधार पर आर्यन खान की जमानत रद्द हुई। कॉन्शियस पोजीशन को हिंदी में सचेत स्वामित्व, सचेत कब्जा कह सकते हैं, यानी आपको पता था कि प्रतिबंधित चीज किसी के पास है या आपके पास है। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत रद्द करते हुए कहा कि आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। दूसरे अभियुक्त के पास 6 ग्राम चरस छुपी हुई रखी थी। आर्यन को इसकी जानकारी थी कि उनके दोस्त के पास ड्रग्स है, इसलिए कहा जा सकता है कि ड्रग्स दोनों आरोपियों की जानकारी में मौजूद था। व्हाट्सएप की बातचीत में ड्रग्स का जिक्र मिलता है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आर्यन उनके संपर्क में था जो प्रतिबंधित ड्रग्स का धंधा करते हैं, इसलिए साजिश में शामिल होने का मामला बनता है। व्हाट्सएप की बातचीत को देखते हुए नहीं कहा जा सकता है कि खान जमानत पर छूटकर फिर से वही अपराध नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों ने अपने स्वैच्छिक बयान में कहा है कि मस्ती और उपभोग के लिए रखा था। आर्यन खान 19 दिनों से जेल में है, बाकी आरोपी भी। इस पूरी बहस में कॉन्शियस पोजीशन कहीं आसमान से तो नहीं टपका, कानून की स्थापित परंपराओं में होगा ही। खासकर ड्रग्स के मामलों में इस आधार पर कई सारे फैसले दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज खान के मामले में इस तरह का फैसला दिया था। कोर्ट ने नवाज खान का बेल रिजेक्ट कर दिया। इसी पहलू पर बात करने के लिए संविधान और क्रिमिनल लॉ के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा से बात करेंगे। फैजान साहब, मेरा सवाल यह है, पहला कि एक पोजीशन होता है, यानी कोई चीज किसी आरोपी के पास थी, हथियार या ड्रग्स हो, और एक है कॉन्शियस पोजीशन, यानी पास में चीज ना हो मगर उस चीज के होने की जानकारी हो कि कहीं पर है, किसी के साथ है। कानून में इस आधार की यात्रा कैसे शुरू होती है और ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जरा बताइए।
रवीश, पहले तो ये समझिए कि पोजीशन का जो प्रिंसिपल है उसको कहते हैं कि पोजीशन इज 9 पॉइंट ऑफ लॉ, यानी 90% किसी भी लॉ में जो है वो पोजीशन है, यानी किराएदार मालिक मकान में झगड़ा है तो पोजीशन जिसके पास है वो माना जाता है कि बड़ा अहम है। लेकिन यहां बात हो रही है पोजीशन एक जुर्म की तरह, एक क्राइम की तरह। तो इसमें जो पूरा एक सिस्टम रहा वो ये कि किसी भी चीज को हम जुर्म जब मानेंगे जब उसको करने वाले ने कोई प्रोहिबिटेड एक्ट किया हो, यानी अगर किसी ने मर्डर किया है तो कोई आदमी मरा हो, अगर किसी ने चोरी की है तो कोई सामान उसने चुराया हो, और उसके साथ साथ होगा मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड। तो जब जराइम डिफाइन किए जाएंगे पीनल कोड में या किसी और लॉ में, उसमें वर्ड्स आएंगे जो डिनोट करेंगे मेंटल स्टेट, नोइंगली, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में और फिर अमेरिका में भी ऐसे नए रेगुलेटरी क्राइम्स बने, सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स बने, फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड क्राइम्स बने, जिसमें यह कहा गया कि सरकार को प्रूफ करने में तकलीफ हो रही है इसलिए मेंटल स्टेट जो है वो हटा दी जाए, और यह कहा जा रहा है हूएवर पजेसेस, हूएवर कॉजेस डेथ, यानी मेंटल एलिमेंट उसे हटा दिया गया। फिर जब कोई 150 साल तक ये चलता रहा और ये हुआ कि ये बहुत ही अनइथिकल बात है कि किसी का इंटेंशन नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है और उसको सजा दी जाए, तो मेंस रिया दोबारा से आने लगा। अब ये जो पजेशन वाले जराइम है इनके सिलसिले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मशहूर केस है वार्नर का। लेकिन आप देखिए रवीश के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं हर केस के। 20,000 गोलियां थी इस आदमी के पास और यह क्वेश्चन था कि क्या यह पजेस करता है उन्हें या नहीं करता, और कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फिजिकल पजेशन से काम नहीं चलेगा कि उसके कब्जे में कोई चीज है, बल्कि क्या उसका इंटेंट है उसे पजेस करने के लिए, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में पजेशन के दो एलिमेंट हैं, कॉर्पस पजेसनेस यानी आपके फिजिकल कब्जे में हो, कंट्रोल में हो, और फिर आपका इंटेंट हो उसे पजेस करने का। जैसे आपके घर में कोई सामान रखा है, आप घर से बाहर गए हैं तो आप इंटेंट करते हैं वो आपके पजेशन में, इसलिए कोई घुस के उसे ले नहीं सकता। इंडिया में पहला केस इसमें बड़ा हुआ 1964 में एमएच जॉर्ज का। फिर देखिए क्वांटिटी रवीश, 30 किलो सोना ये आदमी ज्यूरिख से मनीला जा रहा है, प्लेन अचानक बॉम्बे में रुक गया और वहां पर उसके पास से यह सोना पाया गया। एक नोटिफिकेशन से इसको क्राइम बनाया गया था 2 दिन पहले और उसे सजा हो रही है। यहां आप देख लीजिए आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो अहम चीज है। ये मैं समझता हूं कि पोजेशन के ऑफेंसेस में कोर्ट्स ने भी कहा है बार बार कि हर केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे वो डिटरमिन करेंगे, और कोई अगर एक भी फैक्ट अलग है बिल्कुल यूनिक तो उसके बिना पर लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए।
ठीक है, अब जानबूझकर या कॉन्शियस पोजीशन की जो बात हो रही है, जानकारी है, इसे क्या केवल व्हाट्सएप चैट से साबित किया जा सकता है? आर्यन के केस का उदाहरण दे तो बहुत से नौजवान जैसे बातचीत में सुनने को मिलता है कि एक दूसरे से ड्रग्स की बात करते हैं, या उन्हें पता होता है कि उनका दोस्त जो है वो ड्रग्स ले रहा होता है लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन कभी किसी व्हाट्सएप चैट में ये बात आ जाए तो क्या वो दोस्त जो जानता है दूसरे के बारे में क्या अपराधी हो सकता है, क्या उसे सजा मिल सकती है?
रवीश, पहली चीज तो ये कि व्हाट्सएप चैट एक प्राइवेट चैट है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। दूसरे, हमारे इविडेंस लॉ में जो पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच अगर बात कही जाए, हस्बैंड ने बीवी से कोई बात कही, वकील से किसी क्लाइंट ने कोई बात कही, उसकी एविडेंस नहीं दी जा सकती। मैं ये समझता हूं कि बहुत वीक केस है इस बात पर कि साहब बातचीत हो रही है। दूसरे, अक्सर ऐसा होता है, पूरे जो लॉ है नार्कोटिक ड्रग्स का उसमें मेन पर्पज ये है कि हम ये लोग जो इस तरीके की चीजों में पड़ गए उनको दोबारा से समाज में ले आए, रिफॉर्मेशन हो, उनको सिक्योर कर लें दोबारा। उसमें अक्सर आपसे उनसे लंबे एंगेजमेंट करने पड़ते हैं, उस दौरान अगर कोई बात कर रहा है तो जो बात करने वाला है अगर उसकी भी लायबिलिटी हो गई तो फिर तो आप ये समझिए कि हम जो नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट है उसकी पॉलिसी से हट गए। रवीश, जो चंद लॉ में वर्ड्स हैं, कहते हैं लॉ इज गेम ऑफ वर्ड्स, ये जो सेक्शन 8C है जो इस केस में भी इन्वॉल्व है आर्यन के, आप देखिए क्या क्या चीज को प्रोहिबिट करता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंटर स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देश से विदेश आयात और निर्यात, इसमें सबसे कम कोई चीज है तो वो है पजेशन लो क्वालिटी का, क्योंकि एक्ट की पॉलिसी है कि कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आपके पास है यानी एक किलो से ज्यादा तो डिफरेंट डिस्पेंसेशन होगा, और अगर स्मॉल क्वांटिटी में है, और स्मॉल क्वांटिटी की डेफिनेशन रवीश 100 ग्राम तक है तो डिफरेंट डिस्पेंसेशन होगा, और फिर उसमें कंजम्पशन की बात हो रही है, कंजम्पशन वाले केसेस में सजाएं नहीं देनी है बल्कि यंगस्टर्स को दोबारा से क्योर करके समाज का हिस्सा बनाना है। मैं ये समझता हूं कि ड्रग एडिक्ट्स को बचाना बहुत बड़ा काम है। ये जो एक प्यूनिटिव क्रिमिनोलॉजी की तरफ, एक रिवेंजफुल वेंजियंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मिसयूज है।
जी, जो पोजीशन है यानी कोई चीज आपके पास से मिली हो वो किस तरह से अपराध है, जिसे होने भर से और कोई चीज नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि किसी के पास है तो अपराध है, तो क्या इन दोनों में सजा में कोई फर्क होता? अभी आपने कहा कि जो ड्रग एडिक्ट है उसके खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है वो भी गलत है, वो क्रिमिनल जस्टिस का ये मकसद नहीं है इस मामले में, लेकिन क्या दोनों की सजाएं अलग हैं?
आप देखिए, इस एक्ट को पढ़ना चाहिए, उस एक्ट में आप सोचिए कि कहीं पर यह बात कही जा रही है कि मैंडेटरी डेथ सेंटेंस, गो के ये भी सुप्रीम कोर्ट के मिथु सिंह के जजमेंट के खिलाफ है, यानी किसी का एक बार कन्विक्शन हुआ और अगर दोबारा कन्विक्शन होगा तो उसको सिर्फ डेथ पेनालिटी ही दी जा सकती है, यानी ये प्रोविजन ही एब्सोल्युटली असंवैधानिक है। लेकिन आप देखिए कि जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इस केस में कंजम्पशन भी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ पजेशन प्रूव हुआ है दोस्त के ऊपर, कंजम्पशन में 1 साल की सजा या 20 साल का जुर्माना या दोनों, यानी हो सकता है कि कोई जज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए 1 दिन की भी सजा ना दे और सिर्फ 20,000 का फाइन लगाए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि अगर कोई फाइनेंस कर रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग को तो उसको 20 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना, ये दोनों केसेस को मिलाना मैं समझता हूं कि बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है और बिल्कुल एब्सर्ड और रेडिकुलस है।
तो इसी तर्ज पे अगर पोजीशन वाली बात करें तो जैसे मुद्रा पोर्ट पे जिस जहाज से 20,000 करोड़ का ड्रग्स आया, उस जहाज के कर्मचारियों, जहाज के कप्तान, पोर्ट के प्रबंधक सब पर ये कॉन्शियस पोजीशन लागू हो सकता है?
नहीं, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी कि दूसरे के पोजीशन में जो चीज है अगर उसकी आपको नॉलेज है उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होने लगे। यकीनन लॉ में एक ड्यूटी है कि कोई जुर्म अगर होने वाला है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें, लेकिन अक्सर अगर वो आपका दोस्त है और आप चाहते हैं कि वो इस बुरी लत से वापस आ जाए तो आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे। मैं समझता हूं ये प्रिंसिपल ही गलत है। देखिए बात जो हो रही थी पूरी कॉन्शियस पजेशन की, वो ये हो रही थी कि मेरे पजेशन में चीज थी तब भी मुझे सजा नहीं होगी अगर मुझको मालूम नहीं था और वो इंटेंशनल पजेशन नहीं था और मैं अवेयर नहीं था उसके फैक्ट्स के बारे में कि ये पजेशन में है। ये बात हो रही, यानी कोई कोरियर है उसको आपने कोई सामान दे दिया और वो बीच में पकड़ा जा रहा है तो उस कोरियर के पजेशन से वो रिकवर होगा लेकिन उसका इंटेंट नहीं है उसे पजेस करने का। हम बिल्कुल उसका उल्टा इंटरप्रिटेशन कर ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे के पजेशन में कोई चीज है और आपको उसकी नॉलेज हो गई तो आपकी भी लायबिलिटी उसके बराबर हो गई। मैं ये समझता हूं ये बिल्कुल क्लासिकल क्रिमिनल लॉ का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है।
जी फैजान साहब, फिर तब आप इस आर्यन खान के मामले में जो ये उनके बेल को उसके बेल को जो रिजेक्ट किया गया है उस पूरे प्रोसेस को जो डिबेट चल रहा है उसको कैसे देखते हैं फिर?
देखिए रवीश, हमने आपसे बेल के बारे में बहुत बार बात की है। बेल का ऑर्डर हर बार मैंने कहा है ब्रीफ होना चाहिए। ये भी देखिए 21 पेज का ऑर्डर है, इसमें मेरिट्स पर कमेंट किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। बेल रूल होनी चाहिए, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। इस केस में मैक्सिमम सजा ही अगर किसी को एक साल हो सकती है जो आमतौर से नहीं दी जाती है किसी भी मामले में, मैक्सिमम पनिशमेंट बहुत रेयरली दिया जाता है, मिड पॉइंट दिया जाता है, यानी एक साल की अगर मैक्सिमम सजा है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने दी जाएगी, उसमें बेल दे देनी चाहिए। यह कहा जा रहा है कि साहब व्हाट्सएप चैट का सबूत है और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है यह बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, यह इविडेंस टेम्पर करेगा। अरे व्हाट्सएप पे जो चैट है उससे तो आप कोई टेम्पर नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि बेल का डिनायल इस केस में बहुत हार्श है, ये बच्चों को हम खो देंगे। हमारा एफर्ट होना चाहिए कि बच्चे वापस आएं। और आप देखिए जितने भी केसेस इसमें कोर्ट किए जा रहे हैं, नवाज खान का केस कोर्ट किया है जज साहब ने, उसमें 3 किलो हीरोइन बोनेट में कार के थी ये पाई गई थी। जो और केस मोहनलाल का है 2015 का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो था। यहां बात धर्मपाल का केस है, 65 kg उसमें रिकवर हुआ था। यहां आपके पास 2.6 ग्राम 5 ग्राम 7 ग्राम की बात हो रही है। ये कोई इलीगल ट्रेड नहीं हो रहा है, ये कोई रैकेट नहीं है, ये कुछ बच्चे हैं जो कुछ वजह से जो है दूसरे रास्ते पे चले गए। मैं समझता हूं उनको समाज में इंटीग्रेट करना चाहिए। और रवीश देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और अगर एक्यूज को प्रूफ करना है तो उसके ऊपर लेस बर्डन है। प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, बाबरी मस्जिद के केस को याद कीजिए, वहां रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव नहीं हुआ था केस, सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस में केस रामलला के फेवर में डिसाइड कर दिया गया। मैं ये समझता हूं कि इस केस में हाईकोर्ट को बेल देनी चाहिए, वरना यह कि जो पॉलिसी है कि लोग क्राइम ना करें, लोग ड्रग से बाहर निकल आए, ये कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड का मामला नहीं है, ये कंजम्पशन या पजेशन का मामला है। वो भी उसके पास से नहीं मिला आर्यन के, उसके दोस्त के पास है। उस पर लायबिलिटी क्रिएट करना, और ऑलरेडी इतने दिन हो गए हैं जेल में, मैं समझता हूं इससे लोग हार्डेंड क्रिमिनल बन जाते हैं। जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा, हमारी जेल्स हैं यूनिवर्सिटीज ऑफ क्रिमिनलिटी। ये हम समाज को, हम जो भी स्कोर सेटल कर रहे हैं शाहरुख खान के साथ, लेकिन मैं समझता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस की पॉलिसी के हम खिलाफ जा रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, इस मामले में कानून की तकनीकी और सामाजिक पहलुओं को सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है एक ब्रेक का, हम ले रहे हैं ब्रेक।
थैंक यू।
क्या उज्ज्वला के तहत दिया गया सिलेंडर इतना महंगा हो गया, गरीबों की पहुंच से इतनी दूर जा रहा है कि लोग अब कबाड़ी वाले को भी बेच रहे हैं? एक बार में तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट को देखिए।
इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर से गृह मंत्री अमित शाह ने की, लेकिन उसी राज्य के भिंड में अब ये सिलेंडर कबाड़ में बिकने लगे हैं। योजना के साथ जो चूल्हा मिला था वो भी भूसे के ढेर के बीच कबाड़ में पड़ा है।
1000 रुपया का सिलेंडर भरवा के मजबूरी पत्ते।
योजना के लाभार्थी वापस गोबर के कंडे और लकड़ी जलाकर चूल्हा सुलगा रहे हैं। करें भी तो क्या, सिलेंडर के दाम 925 रुपए से 1050 रुपए के आसपास है, जो इनकी पहुंच से दूर है।
नहीं, ये सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे, चार चार बच्चे मजदूरी करते आदमी कहाँ से भरवाएं।
यहाँ क्या है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उस चक्कर में महिलाएं ऑनलाइन तो कर देती हैं सिलेंडर, पर लेने इसलिए नहीं आ पाती कि उनके पास पैसे की व्यवस्था ही नहीं हो पाती उतनी।
भिंड जिले में 2,76,000 लोगों के पास गैस कनेक्शन है, जिसमें से 1,33,000 कनेक्शन उज्ज्वला के तहत मिले हैं। प्रशासन का कहना है कि लगभग 77% लाभार्थियों को वो गैस दे चुके हैं, बाकी के लिए सर्वे जारी है। दूसरे चरण में लगभग 9,00,000 हितग्राहियों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। देश भर में लगभग 9 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 74,00,000 लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। वैसे कबाड़ में सिलेंडर मिलने पर जिला आपूर्ति अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हालांकि कनेक्शन वापसी के सवाल पर वो चुप्पी साध लेते हैं, नियमों का हवाला देते हैं।
पूरा कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है, उसमें रेगुलेटर, चूल्हा और उसकी रिफिल भी फ्री दे रहे हैं। इस बार पहली बार शासन ने रिफिल भी फ्री कर दी है उसकी।
सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग सिलेंडर भरा नहीं रहे हैं, कबाड़े में बेच रहे हैं,
ऐसी जानकारी हमें नहीं है।
नहीं, अगर आपके पास ऐसी जानकारी आती है जो उज्ज्वला योजना के
कंपनियों को हम निर्देशित करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें कार्रवाई करने के लिए हम बताएंगे।
सरकार कनेक्शन वापसी का ठोस आंकड़ा नहीं देती, लेकिन एजेंसी संचालक कहते हैं कि लगभग 70% लाभार्थी दोबारा गैस भरवाने नहीं आ रहे हैं। उज्ज्वला के नए नए और चमचमाते इश्तिहार के बीच सरकार एक बेहद पुरानी और बुनियादी बात भूल जाती है कि गरीबों के लिए चूल्हा कोयले से जले या गैस से ज्यादा अहम है कि चूल्हा जलता रहे, और इस महंगाई में तो चूल्हा जलाते रहना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं रही। भिंड से दिलीप के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।